ये सवाल हम सब अक्सर पूछा जाता है कि आपसे जब ये दरियाफ्त किया जाए कि सुन्नत क्या है और सुन्नत की एक मुतय्यन फहरिस्त भी आपने अपनी किताब में दी है, तो आप ये बताते हैं कि सुन्नत तो इजमा और तवातुर के ज़रिए हम तक पहुंची है और मुसलमानों की पूरी नस्लें और माशरा उसको पहुंचाता रहा है, लेकिन वो नस्लें और माशरा सुन्नत पहुंचाता रहा है, उन नस्लों और माशरे से उस सुन्नत की वेरिफिकेशन का अमल कैसे होगा? हम कैसे आज निकलेंगे, क्या बाज़ारों में जाएंगे, मुसलमानों को जमा करके उनसे पूछेंगे, इजमा और तवातुर दरियाफ्त कैसे होगा? और यही वो इजमा और तवातुर है जो शुरू से आज तक चला आ रहा है। तो उसके लिए फिर आप फरमाते हैं कि आप माजी की जो तारीखी रिकॉर्ड है फिक का उसमें देखें। तो फिर सवाल इस पे पैदा होता है कि फिर इजमा और तवातुर तो एक तरीके से खबर वाहिद के ज़ेर असर ही आ गया।
ये सवाल जब मुझसे किया जाता है तो मैं हैरत में चला जाता हूँ। मुसलमानों का पूरा इल्म इस बात को ऐसे ही बयान करता है, यानी मुसलमानों के पूरे इल्म की तरफ जब आप रुजू करते हैं तो वो आपको ये कहेगा कि ये कुरान मजीद हमको मुसलमानों के इमाम और तवातुर से मिला है। सुन्नत के मामले में इमाम शाफ़ी यही कहेंगे, बाकी मुहक्किकीन यही कहेंगे, उलमाए उसूल यही कहेंगे कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो हमें नकलुल काफा अनिल काफा के तरीके पर मिला है, मुसलमानों के अवाम ने उसको मुंतकिल किया है। तो ये बात मैंने कोई नई बात नहीं कही, यानी मुसलमानों की पूरी इल्मी तारीख इसको ऐसे ही पेश करती है, मुसलमानों के जलीलुल कदर अहले इल्म इसी को इस तरह ही पेश करते हैं। अलबत्ता अखबार अहाद से मिलने वाले इल्म को भी हमारे यहाँ सुन्नत से ताबीर कर लिया गया। मैंने इस पहली बात में पुराने इल्म से कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उसको मज़ीद वाज़े करके मज़ीद प्रिसीजन से बयान कर दिया है। सिर्फ़ उस हिस्से से इख्तलाफ किया है, और ये इख्तलाफ़ किया है कि जो कुछ अखबार अहाद में दीन की हैसियत से बयान हुआ है वो नई चीज़ नहीं है, वो इसी दीन की, यानी ये जो हमें इजमा और तवातुर से मिला है, ये जो सुन्नत है कुरान मजीद है, इसी दीन की तफ़ीम व तबीन है, इसी दीन पर रसूलुल्लाह सल्लम के अमल की रवायत है। और इस लिहाज से गोया आपका उसवा हसना इससे मालूम होता है। तो मुसलमानों का पूरा इल्म आप उसूल की कोई किताब उठा लें, वो यही बयान करेंगे, इमाम शाफ़ी से लेकर इमाम गज़ाली तक, उनके बाद के तमाम आइम्मा तक, इमाम शातबी, जिन लोगों ने भी उसूल पर काम किया है, वो सरख्सी हों राज़ी हों, सब के सब इस बात को बयान कर रहे हैं। यानी इजमा और तवातुर ही दीन की असल बुनियाद है, ये पूरा का पूरा दीन ऐसे ही मुंतकिल हुआ है। मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका कि ये दर हकीकत कोई दीन की इस्तलाह नहीं है, बल्कि जब तारीखी चीज़ें मुंतकिल होती हैं तो वो या अखबार अहाद से मुंतकिल होंगी, यानी कोई एक आदमी किसी चीज़ को देखेगा सुनेगा बयान कर देगा, या वो मशहूर बातें होंगी शोहरत पा जाएंगी उनसे लोग इस्तिफादा कर रहे होंगे, और या ये होगा कि किसी कम्युनिटी का इजमा होगा उसके ऊपर और वो तवातुर से नस्लन बाद नस्लन उसको मुंतकिल करेगी। ये आखिरी ज़रिया चीज़ों को यकीनी बना देता है, इंसानी इल्म के दायरे में यकीनी बना देता है। तो ये तरीका ही हमारे यहाँ भी इख्तियार किया गया है। मुसलमानों के मौर्रखीन, मुसलमानों के मुहद्दिसीन, मुसलमानों के फुकहा सब यही ताबीरात इख्तियार करते हैं, सब इसी तरह इसको बयान करते हैं। मैंने जब अपनी किताब मीज़ान को पढ़ाना शुरू किया आज से कई बरस पहले, तो उसमें इब्न अब्दुल बर की जामे बयानुल इल्म के उस इक्तबास से बात शुरू की थी जिसमें वो ये कहते हैं कि सुन्नत यन कसमो किस्मैन, और फिर उसके बाद ये बयान करते हैं कि उसमें से पहली किस्म क्या है, नकलुल काफा अल काफा, यानी मुसलमानों की पूरी जमात उसको मुंतकिल करती है। रही ये बात कि ये अहले इल्म कैसे उसे अक्स करते हैं, यानी मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ये सवाल सबसे है, सबसे है, तो ये कैसे बयान करते हैं, यानी जिस दौर में हम आँख खोलेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि इस वक्त मुसलमानों की जमात जहाँ जहाँ भी पाई जाती है वो किन चीज़ों को दीन की हैसियत से मुत्तफ़िक़ अलैह तौर पर अपनाए हुए हैं और उनका इल्म किस चीज़ पर इजमा रखता है, ये मालूम करेंगे। यानी यूँ नहीं है कि आप बाज़ार में चले जाएंगे वहाँ जाके ढंडोरा पीटेंगे, यानी इंसान पहले मरहले में तो एक आम आदमी की हैसियत से मुतारफ़ होता है, हमने अपने वालदैन से एक चीज़ सीखी, असातज़ा सीखी, अपना के खड़े हो जाते हैं। ये जो बहस है इजमा और तवातुर की, ये आम आदमी की बहस नहीं है, इल्म की बहस है। तो जब आप इल्म के दायरे में दाखिल होते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि मुझे जो दीन बताया जा रहा है कहाँ है, قرآن مجید کے بارے میں یا سنت کے بارے میں آپ مسلمانوں کے علم سے رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کے مدرسوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے عام علماء کی زبان پر یہی ایک بات ہے، تو یہ سارا علم جو آپ کے موجودہ دور کا علم ہے یہ بتا دیتا ہے۔ ہم مراکش سے انڈونیشیا تک مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتے ہیں، ہم ہر سال ان کو حج و عمرہ کے لیے جاتے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ان کو پانچ وقت نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب علم کے طریقے پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسجد کا مولوی ہمیں وہی بات بتاتا ہے، عالم وہی بات بتاتا ہے، مدرسے کا جلیل القدر استاد وہی بات بتاتا ہے، پھر ہم کتابیں کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سارا علم جو ظاہر ہے کہ اب کوئی ایک تو کتابوں تک محدود نہیں ہے، یعنی لائبریریاں بڑی پڑی ہیں، اس سے اس زمانے کے علم کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی بیان کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ چیز بالاجماع مانی جا رہی ہے، پوری مسلمان امت کا علم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سنت کا ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کا جو علمی ریکارڈ ہے اسی کو دیکھیں گے نا، یعنی ماضی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہر دور ہر صدی کا ریکارڈ اس کی یا تصویب کرے گا یا کہیں تردید کرے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصویب بھی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے علم تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام شافعی ہیں یا ان سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں یا ان سے پہلے امام مالک ہیں، تو ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل وہی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سارا علمی ریکارڈ پچھلی 14 صدیوں کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ بالکل متفق اللفظ سامنے آتا ہے اور ہر ہر دور کی تصنیفات بھی اسی کی گواہی دیتی ہیں تو کوئی شبہ اس میں باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ دین میں ایک یقینی چیز ہے، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ رہی اخبار احاد تو وہ تو حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اور ان میں جو چیزیں نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن نہیں نقل ہوا ہوا، یعنی بخاری میں نہیں قرآن نقل ہوا ہوا، ان میں قرآن سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل ہوئی ہوں گی، ان میں آپ کا اسوہ حسنہ نقل ہوا ہوگا، تو وہ تو بالکل چیز ہی دوسری ہے۔
تو ہم جب یہ جاننا چاہیں کہ جو اجماع اور تواتر ہے یہ پہلی صدی میں بھی تھا، دوسری میں بھی تھا، تیسری میں بھی تھا، تو اس کو جاننے کا کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، کیسے ہم جانیں گے؟
مسلمانوں کا علم، ظاہر ہے علم اپنا ریکارڈ مرتب کر چکا ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کی پوری تاریخ اب روشنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں میں مختلف جگہوں پر ہر جگہ وہ چیز ثبت ہو چکی ہے، وہ کوئی ایک کتاب نہیں ہوتی جس کو آپ اٹھاتے ہیں، آپ ان کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، آپ ان کی فقہ کو اٹھاتے ہیں، آپ ان کے علمی کام کرنے والے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، سب یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔